मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुख्य विषय के अंतर्गत मैं जो G7 राष्ट्रों का जो शिखर सम्मेलन हुआ है उस पर बातें करूंगा, लेकिन एक दो बातें मुझे आप सबसे कहनी है। पहला तो यह कि जो मैंने आपसे चाहा था कि आप सब अपनी अपनी राय दें कि अब जो हम प्री एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस के बारे में बातें कर रहे थे उसकी जगह पर क्या किया जाना चाहिए, तो ढेर सारी आप सबकी प्रतिक्रियाएं मिली हैं और मैंने देखा है कि उसमें लगभग लगभग 3/4 प्रतिक्रियाएं इससे संबंधित हैं कि सर प्री पर थोड़ी सी और भी बात की जाए, क्योंकि प्री एग्जामिनेशन अभी होने हैं। मतलब अच्छी बात है कि आप सबने तर्क भी दिए हैं कि अभी होने ही हैं, अगर प्री ही क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो मेन्स वगैरह तक तो पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो प्री पर जरा और ज्यादा बात हो जाए ताकि इसमें हम अपने आप को और अधिक मजबूत बना लें। हालांकि और भी दूसरे राय हैं जिसमें यह है कि मेंस के आंसर राइटिंग के बारे में बताया जाए, निबंध कैसे लिखें इसके बारे में बात की जाए, कुछ ने जो फोर्थ पेपर आपके मेंस का एथिक्स का होता है उस पर बात करने के लिए कहा। तो देखिए, वैसे तो डायमेंशंस बहुत हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे विषय हैं, परीक्षा की तैयारी के इतने सारे आयाम हैं कि उन पर बातें की जा सकती हैं, खूब बातें की जा सकती हैं और बहुत व्यावहारिक किस्म की बातें की जा सकती हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हर फोरम की अपनी सीमाएं होती हैं, हर फोरम का अपना चरित्र होता है, तो आप सब की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए और खासकर बहुमत का सम्मान करते हुए फिर मैंने अभी यही सोचा है कि आइए कुछ दिनों तक प्री के बारे में और कुछ बातें करते हैं, इसके बाद फिर आप लोग जैसा चाहेंगे उसमें उस तरीके की तब्दीली की जाएगी। ये एक महत्वपूर्ण सूचना मुझे आप सबको देनी थी। दोस्तों, इस बीच में कोई खास खबर तो नहीं है, लेकिन एक खबर जरूर है जिसकी ओर मैं आप सबका ध्यान दिलाना चाहूँगा। अब ये आपके ऊपर है कि आप इस खबर का कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे। जो तमिलनाडु में अभी जो सरकार बनी है, चीफ मिनिस्टर वहाँ के M.K. स्टालिन जी हैं, उन्होंने एक घोषणा की है और घोषणा ये की है कि तमिलनाडु में जो मंदिर है, बहुत मंदिर है, लगभग 36,000 मंदिर हैं, सोच करके देखिए 36,000 मंदिर, और वैसे भी स्टेट ऑफ टेम्पल के रूप में आप उसे कह सकते हैं, उन मंदिरों में, सभी मंदिरों में नहीं, अभी लगभग 200 जो पुजारी नियुक्त किए जाएंगे वो गैर ब्राह्मण होंगे। मतलब सामान्यतया अभी तक क्या होता है कि मंदिरों में जो पुजारी नियुक्त किए जाते हैं या जो पुजारी होते भी हैं वो ब्राह्मण होते हैं। इन्होंने घोषणा की है कि 200 गैर ब्राह्मण पुजारी नियुक्त किए जाएंगे और उनके लिए जल्दी ही एक कोर्स भी शुरू किया जाएगा, यानी कि पूजा पाठ जो भी विधियां होती हैं उसका कोर्स भी शुरू किया जाएगा और उस कोर्स को पूरा करने के बाद फिर वे पुजारी बन जाएंगे। तो दोस्तों, ये एक घोषणा है। अब देखिए कि स्वाभाविक है कि इस घोषणा को लेकर के अभी राजनीति होगी, लोग अपने अपने ढंग से इसकी अपने अपने ढंग से व्याख्या करेंगे, कुछ आलोचना करेंगे, कुछ प्रशंसा करेंगे। अब आप इसे किस रूप में लेते हैं ये आपके ऊपर है, लेकिन एक बात मैं अपनी ओर से जरूर सजेस्ट करना चाहूँगा कि दोस्तों, आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि आप अगर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही जब आप सिविल सर्वेंट बन जाएंगे तब आप को पैरेलल दो रूपों में रहना पड़ेगा, दो रूपों में। एक रूप होगा सिविल सर्वेंट का जहां आप एक पब्लिक फिगर हैं, दूसरा आपका रूप होगा वो व्यक्तिगत होगा। व्यक्तिगत रूप से आप चाहे इसकी आलोचना चाहें तो कर सकते हैं, व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि आपके दिमाग में जाति हो, आपके दिमाग में परंपराएं हो, आपके दिमाग में धर्म हो, जो भी हो। लेकिन अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं या सिविल सर्वेंट बन जाते हैं तो डेफिनेटली फिर आपके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वह होता है संविधान। और आप देखेंगे कि संविधान में जो हमारी वर्ण परंपरा है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र या यूं कह लीजिए कि जो जाति परंपरा है उसे मान्यता नहीं दी गई है। ये आपका स्टैंड होना चाहिए और सच पूछे तो इससे आगे भी एक स्टैंड होना चाहिए, वो ये है कि जब हम पब्लिक फिगर बन जाते हैं तो स्वाभाविक है कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है और जो हमारा सामाजिक जीवन है बेहतर हो, कि उसमें काफ़ी कुछ तालमेल हो जाए, काफ़ी कुछ समानता आ जाए, तब तो फिर बात ही कुछ और हो जाती है। तो दोस्तों, आइए अब सीधे मुख्य विषय पर आते हैं और वो है G7 का जो शिखर सम्मेलन ब्रिटेन में हुआ है। इसके बारे में आज अखबारों में आपने काफ़ी कुछ पढ़ा होगा और न्यूज़ में भी सुना होगा, और कल दूरदर्शन चैनल पर इसके बारे में काफ़ी कुछ खबर के रूप में भी चीज़ें थी और साथ ही इस पर डिस्कशन भी था। मुझे पूरी उम्मीद है कि उसे भी आप लोगों ने सुना और देखा होगा। मुझे ऐसा लगता है फ्रेंड्स कि ये जो G7 का शिखर सम्मेलन हुआ है, यह इस बार के मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और यहाँ तक कि अभी जो इंटरव्यू शुरू होने जा रहे हैं सिविल सर्विसेज के, उसके लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। G7 ग्रुप ऑफ 7, इसमें कौन कौन से नेशंस हैं इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं और मैं रिपीट कर रहा हूं कि कौन कौन से देश इसमें हैं। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं होना चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए कि अरे ये है कि नहीं है, अरे वो है कि नहीं है। बहुत क्लियर होना चाहिए कि इसमें कौन कौन से राष्ट्र हैं, बिल्कुल क्लियर। मैं इसके बारे में आपको बता चुका हूं, और यदि आप फिर जानना चाहते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा कि मुझसे न सुनकर आप खुद ढूंढें कि कौन कौन से हैं, और बाकायदे उन्हें एक बार जाएं मैप में और स्पॉट करें कि अच्छा कैनेडा यहाँ है, अच्छा USA यहाँ है, अच्छा ब्रिटेन यहाँ है, अच्छा फ्रांस यहाँ है। इस तरीके से आप उन्हें देखें, समझने की कोशिश करें कि इटली यहाँ है, जापान यहाँ है, कहाँ कहाँ जर्मनी है, 7 देश आपके दिमाग में क्लियर हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात कि अभी जो शिखर सम्मेलन हुआ है, इस शिखर सम्मेलन में 4 राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया, एक तरह से अतिथि के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, अतिथि आप मान लीजिए के रूप में किया गया। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें भारत भी है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी और भारत के नागरिक की दृष्टि से भी भारत को आमंत्रित किया गया। 3 और भी राष्ट्र हैं जिसमें एशिया से ही दक्षिण कोरिया है। दक्षिण कोरिया आप जानते हैं कि बहुत ही तेजी के साथ विकसित होता हुआ राष्ट्र है। दक्षिण अफ्रीका है, जब हम अफ्रीका महाद्वीप की बात करते हैं तो उसमें जो सबसे विकसित राष्ट्रों में हमें दिखाई देता है तो दक्षिण अफ्रीका है, और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया जो अपने आप में पूरा का पूरा महाद्वीप है। ये 4 राष्ट्र, 7 इसके परमानेंट मेंबर है, 4 इसके अतिथि थे, तो ये 11 राष्ट्रों का समूह हो गया, लेकिन हम उस तरीके से 11 राष्ट्र नहीं मानेंगे। इससे साफ पता लगता है कि जो G7 जो ग्रुप है, अब फिर से वो बहुत ज्यादा सक्रिय हो रहा है, एक्टिवेट हो रहा है, और जिस तरीके से इन्होंने अभी शिखर सम्मेलन में डिसीजन लिए हैं वो दिखा रहे हैं कि अब शायद फिर से एक नई दुनिया बनाने की कोशिश हो रही है। ये नई दुनिया किस तरीके की, मैं अगर कह रहा हूं नई दुनिया तो किस तरीके की, दोस्तों सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद एक नई दुनिया के निर्माण में देश जुट गई। UNO अस्तित्व में आया, संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आया, और आप देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ के फिर जो दूसरी एजेंसीज थी वो अस्तित्व में आई ताकि दुनिया में एक व्यवस्था कायम की जा सके। मैं नहीं कह रहा हूं कि UNO के पैरेलल कुछ होने जा रहा है, लेकिन खासकर ये जो कोविड का माहौल रहा है और इसने पूरी दुनिया पर जो घातक प्रभाव डाला है उसे देखते हुए 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं। दो चीजें। नंबर 1 कि चीन जो लगातार एक साम्राज्यवादी इच्छा लेकर के चल रहा था उसे कैसे रोका जाए, इस पर पूरी दुनिया की निगाह है और पूरी दुनिया चिंतित भी है। जिस तरह से वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगातार अपना प्रभुत्व बढ़ाता चला जा रहा है, इसके साथ ही साथ बकायदे वो उसका जो प्रोजेक्ट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, जिसके तहत वो एशिया अफ्रीका और यूरोप तक के मार्ग से जुड़ करके और इन देशों पर में व्यापार अपना विकसित करना चाह रहा है, जिस तरीके से इसके लिए वो छोटे छोटे देशों को धन उपलब्ध करा रहा है, वहाँ निर्माण कर रहा है और उन देशों पर अप्रत्यक्ष रूप से आप यूँ कह लीजिए कि अपना दबदबा कायम करता जा रहा है, उसे देखते हुए पूरी दुनिया कहीं ना कहीं चिंतित जरूर है। और इस जो कोरोना पीरियड में जो चीन का जो स्वरूप रहा है, अब आप देखिए कि किस तरीके से जो G7 के राष्ट्र हैं वो उसे उभार रहे हैं कि जो कोरोना का जो वायरस है, कोरोना वायरस ये चीन के ही एक लैब से पैदा हुआ है, अब फिर से उसकी जांच शुरू हो गई है, और यदि कहीं यह एस्टेब्लिश हो गया तो आप कल्पना करके देखिए कि चीन किसी को इसका क्या जवाब देगा, क्योंकि दुनिया ने जबरदस्त रूप से तबाही मचाई है। तो चीन को नियंत्रित करना, और इसीलिए चीन को नियंत्रित करने के लिए ही ये जो शिखर सम्मेलन था उसमें घोषणा की गई है B3W। B3W, B3 का मतलब है, तीन ऐसे शब्द हैं जो बी से शुरू होते हैं, बिल्ड, बेटर, और इसके बाद नहीं, बिल्ड यानी कि बनाओ, क्या बनाओ, जो गरीब और विकासशील राष्ट्र हैं वहां आधारभूत ढांचा बनाओ, सड़कें बनाओ और दूसरी चीजें बनाओ। तो आपको नहीं लग रहा है कि अगर सड़कें बननी शुरू हुई और इस तरह का विकास होना शुरू हुआ तो ये कहीं ना कहीं चीन का जो प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट, उसका जवाब होगा। और इसमें लगभग लगभग सोचिए कि 2920 लाख करोड़ रुपए खर्च करने की बात कही गई है, चीन के बिल्कुल समानांतर। दूसरा है बैक। बैक का मतलब है कि अगर किसी गरीब देश को, विकासशील देश को सपोर्ट की जरूरत है तो हम उसे सपोर्ट करेंगे। और आप देखिए कि अभी कोरोना के माहौल में जो खासकर गरीब देशों में वैक्सीनेशन की का जो संकट पैदा हो गया है उसे लेकर के बकायदे G7 में ये घोषणा की गई है कि हम उन्हें टीका उपलब्ध कराएंगे। और तीसरा है बेटर, यानी कि हम एक अच्छी दुनिया बनाएंगे। तो बेटर दुनिया कैसे बनेगी, उसके अंदर जलवायु परिवर्तन को रोकेंगे, जलवायु पर काम करेंगे, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उस पर हम काम करेंगे, इस तरह की बातें, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा खुला बनाएंगे, लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित करेंगे, मानवाधिकार की सुरक्षा करेंगे, ये सब बातें हैं जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाती हैं। इसमें भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। और बहुत बहुत साफ तौर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक नारा दिया, मुझे लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। अभी आपने देख लिया ना, चीन की एक छोटी सी जगह से वायरस निकला था और पूरी दुनिया को कैसे उसने ध्वस्त कर दिया। तो अब हमें दुनिया की दृष्टि से सोचना पड़ेगा, राष्ट्र की दृष्टि से नहीं। तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य, ये भारत का बहुत ही जबरदस्त संदेश है। और साफ तौर पर जब आप डिस्कशन सुनेंगे या आर्टिकल पढ़ेंगे तो अब बहुत क्लियर हो गया है, और दुनिया के राष्ट्र इसको स्वीकार भी करने लगे हैं, दुनिया के जो विकसित राष्ट्र हैं, कि बिना भारत के सहयोग के अब एक नई दुनिया का निर्माण नहीं किया जा सकेगा। और यदि आपको चीन को काउंटर करना है तो सीधी सी बात है कि भारत का सहयोग अनिवार्य है। इसीलिए दोस्तों, यह एक प्रकार से कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती हुई प्रतिष्ठा और उसकी शक्ति को एक तरीके से मान्यता प्रदान करने वाली घटना रही है। इस पर दोस्तों आप लोगों को जो कुछ भी पढ़ने को मिलता है आप उसे देखें, और इस पर अच्छा होगा कि आप पॉइंट्स भी नोट करते जाएं। आज मैं आपको कुछ आर्टिकल्स और एडिटोरियल कमेंट्स प्रोवाइड कर रहा हूं। दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले दोस्तों को धन्यवाद देता हूँ। और इन्हीं में से कुछ मित्रों के नाम हैं, आशु सैनी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से, दीपक श्योराण चरखी दादरी हरियाणा से, जयप्रकाश चौहान जसपुर नगर छत्तीसगढ़ से, श्रुति सुमन बेगूसराय बिहार से, सूरज कुमार सेमापुर बिहार से, वैभव काले बुल्ढाना महाराष्ट्र से, अनुज प्रताप सिंह अनीता कुमारी रांची से, और मानस झा दिल्ली से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।